प्रादेशिक समाचार के साथ में यरमता सिंह। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनाइक ने आज राजधानी ईटानगर स्थित दोरजी खांडू कन्वेंशन सेंटर में आयोजित मिथुन दिवस के दूसरे संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए एकीकृत मिथुन पालन पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए राज्यपाल ने मिथुन पर विभिन्न प्रकाशन जारी किया। कार्यक्रम में प्रगतिशील मिथुन पालकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम में राज्यपाल ने मिथुनों का प्रदेश के लोगों के साथ सांस्कृतिक, आर्थिक और पारिस्थितिक महत्व पर भी बात की। गौरतलब है कि वैश्विक मिथुन आबादी का 89% हिस्सा अरुणाचल प्रदेश में है। राज्यपाल ने मिथुन पालन केंद्र और अनुसंधान पहल के गठन के लिए प्रस्ताव रखते हुए बेहतर नीति, समर्थन और संरक्षण प्रयासों पर बल दिया। उन्होंने मिथुन के दूध, खाल और सिंगों को व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने का भी सुझाव दिया। इस कार्यक्रम को अरुणाचल मिथुन एवं याक संरक्षण मिशन ने मिथुन पर ICAR राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ने मिलकर आयोजित किया था। कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र में मिथुन पालन की चुनौतियों और संभावनाओं को संबोधित करना था। केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने आज राजभवन ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक से मुलाकात की। बैठक के दौरान उन्होंने वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज परियोजना और राज्य में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे विकासात्मक पहलों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री के साथ बातचीत करते हुए राज्यपाल ने 58,000 मेगावाट से अधिक के साथ जल विद्युत में अरुणाचल प्रदेश की विशाल क्षमता और पर्यावरण, पर्यटन, धार्मिक पर्यटन और साहसिक पर्यटन के अवसरों पर जोर दिया। इस बीच केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात राज्य मंत्री, जो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश की 3 दिवसीय यात्रा पर है, ने राज्यपाल को राज्य को पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आज आदि जनजाति का त्यौहार सोलुंग के उपलक्ष्य में आदि समुदाय को सोलुंग की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कीननाने, दादी बुत्त, दोईंग बुत्त और गुमन सोइन से प्रदेश और लोगों पर आशीष बनाए रखने की प्रार्थना की। वहीं उपराज्यपाल चाउना मैन ने भी सोलुंग गिरदी के अवसर पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं लोगों को दी। आदि समुदाय के साथ कृषि के महत्व को मनाते हुए उप मुख्यमंत्री ने खुशी जाहिर की। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दामोस हेरिटेज डाइन को अंतर्राष्ट्रीय रिस्पॉन्सिबल पर्यटन पुरस्कार 2024 में स्थानीय समुदायों को रोजगार देने और कौशल बढ़ाने की वर्ग में पुरस्कार जीतने पर बधाई दी। चुंग घाटी में स्थित पारंपरिक मोनपा घर में आयोजित बढ़िया भोजन की पहल एक उदाहरण है कि किस तरह संरक्षण और संस्कृति स्थानीय जीवन यापन को बढ़ावा दे सकता है। श्री खांडू ने महिलाओं द्वारा नेतृत्व स्वयं सहायता समूहों, भारत के WWF विश्व वन्य जीवन फंड तथा जैव विविधता और आर्थिक स्थिरता के योगदानकर्ताओं की प्रशंसा करते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। महिला एवं बाल विकास मंत्री दासांग लोपुल ने कल प्रदेश में 7वीं राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का शुभारंभ किया। गौरतलब है कि यह कार्यक्रम पूरा सितंबर महीना चलेगा। इस अवसर पर श्रीमती पुल ने कुपोषण मुक्त देश की सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के साथ तालमेल बैठाते हुए इस विषय पर सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान राज्यभर में एक पेड़ माँ के नाम थीम के तहत वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया, जो पर्यावरण और आने वाली पीढ़ी को पोषण करने की प्रतिबद्धता को चिन्हित करता है। पोषण अभियान को भारत सरकार गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों और 6 वर्ष के आयु तक के बच्चों के पोषण संबंधी परिणाम में सुधार लाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। 7वीं पोषण माह जिंदगी के हर पड़ाव पर पोषण के विषय पर जागरूकता फैलाने पर केंद्रित है और थीम है सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत। पूर्व कैबिनेट मंत्री मेदीराम दोदुम का आज निधन हो गया। राज्य उसके निधन पर शोक मना रहा है। मनोरांग गांव में 5 अगस्त 1955 में जन्मे पूर्व मंत्री दोदुम को उनकी व्यापक समाज सेवा और राज्य के विकास में योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1984 में की और बाद में बामिंग निर्वाचन क्षेत्र से पहला कैबिनेट मंत्री बना। दिवंगत दोदुम ने वर्ष 1996 से 1999 तक बागवानी एवं मत्स्य पालन मंत्री के तौर पर प्रदेश की सेवा की। वर्ष 1979 में प्रदेश महिला कल्याण सोसायटी के उप नियमों को तैयार करने और ऑल निशी यूथ एसोसिएशन आन्या की स्थापना में भी उन्होंने सहायता की। सार्वजनिक सेवा और समर्पण की उनकी विरासत भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।